मेरे युवा साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज के भी मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल वाले ही विषय को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने कल वायदा भी किया था कि जो कथन वाले प्रश्न होते हैं उनमें से एक प्रश्न तो कम से कम हम लोग आज भी हल करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए दो छोटे छोटे समाचारों को देख लेते हैं। पहली जो न्यूज है, आपने अनुमान लगा लिया होगा, वो नोबेल प्राइज को लेकर के, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें एक वैज्ञानिक हैं जापान के। बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, बात आपके दिमाग में दर्ज हो जाएगी और इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। पहले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जापान के स्युकुरो मनाबे, मनाबे शब्द आप दर्ज कर सकते हैं। दूसरे हैं जर्मनी के क्लास हेसलमैन, ये जर्मनी के हैं। और जो तीसरे वैज्ञानिक हैं ये हैं इटली के जियोर्जियो पेरिसी। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार आपकी सुविधा के लिए, जापान के हैं स्युकुरो मनाबे, जर्मनी के हैं क्लास हेसलमैन और इटली के हैं जियोर्जियो पेरिसी। इन तीनों को सामूहिक रूप से दिया गया है और इसमें से खासकर दो वैज्ञानिकों को, खासकर जो जलवायु की स्थितियां होती हैं उनके लिए दिया गया है, और एक जो वैज्ञानिक हैं उनको दिया गया है कि एक जो मेटल होता है वो अलॉय स्पिन ग्लास पर केंद्रित है उनका पूरा का पूरा अध्ययन। दोस्तों, एक थोड़ी सी जानकारी के लिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में सच पूछिए तो मैं खुद भी नहीं हूं, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, और यदि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके तो प्लीज़ आप मुझे भी लिख करके भेजिएगा, आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स तक उसे पहुँचा सकूंगा, क्योंकि अभी डिटेल में मुझे इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिल सका है। एक शब्द आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हालांकि बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है लेकिन कभी कभी सिविल सर्विस इसे उठा लेती है, जीमैक्स। बेसिकली जीमैक्स क्या है? ये जो है नौसेना अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास कह लीजिए, जो भारत और जापान मिलकर करते हैं। ये सैन्य अभ्यास नौसैन्य, देखिए नेवी का है, ये अरब सागर में होता है और 2012 से ये हो रहा है। तो बस दिमाग में थोड़ी सी बात आप रख लीजिए कि जीमैक्स क्या है। देखिए, जो मैं ये बात कहता हूं ना कि थोड़ी सी दिमाग में आप बात रख लीजिए, उसका मतलब केवल यही होता है कि यदि आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से उसे पढ़ लेंगे और मन ही मन दो चार बार दोहरा लेंगे तो बस सफिशियंट है। जरूरी नहीं है कि आप इसे नोट करके रखें और इसके बाद दोहराएं, रिविजन करते रहें, क्योंकि अगर आप इन बातों को नोट करते चलेंगे तो कितनी बातें नोट हो जाएंगी आप सोचिए, फिर जब आप दोहराएंगे भी तो बहुत आपके काम की नहीं रह जाती हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि बस आप अपने दिमाग में थोड़ी सी बात को रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, तो मेरा मकसद ही यही होता है कि आपके पास जो लिखित सामग्री है उसका पहाड़ न खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर वो पहाड़ बन गया तो एक तरह का बोझ बन जाएगा, और अगर बोझ बन गया तो फिर आपके काम का वह नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं, और आज फिर से मैं कथन वाले, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद शायद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सी सेट में उन्हें हल करना आपके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा, या कह लीजिए कि वो जो सूत्र होता है वो शायद थोड़ी सी पकड़ में आपके आ जाए। यह क्वेश्चन नंबर 38, पेपर का जो सेट है वो है डी। प्रश्न है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, चार संख्याओं पी क्यू आर और एस, चारों कंटिन्यू में है पी क्यू आर एस, के संबंध में दो कथन एस वन और एस टू तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। इसका पैटर्न यही है, कल की बात को आप याद कीजिए। तो स्टेटमेंट वन है एस वन, आर पी और क्यू से बड़ा है। देखिए, आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, इसका नतीजा क्या निकलना है इससे हमें कोई मतलब नहीं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सा अविभाज्य अंग है, इस तरह के स्टेटमेंट में होते हैं, उसे आप दिमाग में मत लाइए कि आपको कोई हल करना है। हल नहीं करना है, यह बहुत ही अलग तरह का एक सिस्टम है कि स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट, इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर स्टेटमेंट वन में है या स्टेटमेंट टू में है या स्टेटमेंट थ्री में है या किस में है या सबको मिला करके है, बस केवल ये कि अगर आपको ये बता दिया जाए तो आप इसका उत्तर ढूंढ लेंगे, बस इसका संबंध केवल इस बात से है, राइट। तो पी क्यू आर और एस के बारे में दो स्टेटमेंट हैं। तो स्टेटमेंट है एस वन, आर पी और क्यू से बड़ा है। स्टेटमेंट टू, एस सबसे बड़ा नहीं है, जोर दीजिएगा नहीं है। जब हम बहुत तेजी के साथ प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें इस तरह के शब्दों को छोड़ देती है, नहीं है, राइट। एस सबसे बड़ा नहीं है। देखिए कितना सरल प्रश्न है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, फार्मूला नहीं बता रहा हूं। अब इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न पर जोर दीजिए। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो प्रश्न होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न है चार संख्याओं पी क्यू आर और एस में कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब आप देखिए कि इसमें दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह कि इसमें चार शब्द हैं, पी क्यू आर एस, चार अक्षर हैं, कह लीजिए आप पी क्यू आर एस। तो आपको देखना यह होगा कि उस स्टेटमेंट पर जाइए जिसमें इन चारों के बारे में कुछ स्टेटमेंट हो, और अगर चारों के बारे में स्टेटमेंट नहीं है तो आप कैसे अनुमान लगा सकेंगे। चार के बारे में स्टेटमेंट तो चाहिए। तो जब आप इसके आधार पर जाते हैं स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू पर, तो स्टेटमेंट वन में तीन शब्दों का प्रयोग तो मिलता है, आर पी और क्यू, ठीक है, आर पी आर पी और क्यू से बड़ा है, लेकिन एस इज मिसिंग। तो एस क्या है, हम कैसे अनुमान लगा सकेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो स्टेटमेंट वन है वो अपने आप में सफिशियंट नहीं है कि वो बकायदे जो प्रश्न पूछा गया है उसका स्पष्ट उत्तर दे सके, राइट। इसके बाद फिर है स्टेटमेंट टू, और उसमें दिया हुआ एस सबसे बड़ा नहीं है। कह रहा है इस एस सबसे बड़ा नहीं है और पूछा गया है कि कौन सबसे बड़ा है, है ना। देखिए अगर यही पूछ लिया जाता प्रश्न में कि कौन सबसे बड़ा नहीं है तो स्टेटमेंट टू ही अपने आप में सफिशियंट हो जाता। अगर स्टेटमेंट टू में यह स्टेटमेंट होता कि एस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो एस टू एक ही स्टेटमेंट जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त होता, ठीक है। अब आइए हम विकल्पों को देखते हैं, विकल्प क्या है। ए, एस अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, और इसका सीधा सा कारण यह है कि उसमें तीन शब्द तो हैं पी आर पी और क्यू, लेकिन एस इज मिसिंग। तो कैसे हम दे सकते हैं, देखिए तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ना। इसमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स कहीं कुछ नहीं है, है ना, ये सिंपल चीज है। दूसरा स्टेटमेंट है बी, एस टू अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एस टू भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां देख दिया गया है एस सबसे बड़ा नहीं है। अगर इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं होता तो ये अपने आप में पर्याप्त हो जाता, लेकिन यहां नहीं शब्द है, इसका मतलब है कि इसके आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा कौन है। इसके बाद सी है स्टेटमेंट कि दोनों कथन एस और एस टू एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अब आप देखिए कि आपको किस तरह से आगे जाकर के उलझाने की केवल कोशिश की जा रही है, किंतु न तो अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये आपको नहीं लगता है कि आपको उलझाया जा रहा है, जबरदस्ती लंगी मारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने A को रिजेक्ट किया है, आपने B को रिजेक्ट किया है, और ए और बी का संबंध स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू से ही है। तो यहां बिल्कुल उसी को रिपीट किया जा रहा है कि न तो एस वन अकेला देने में सक्षम है और न एस टू अकेला देने में सक्षम है, हां इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम उत्तर दे लेंगे। तो देखिए यहां पर केवल वाक्य को लंबा किया गया है, आपके दिमाग को उलझाने की कोशिश की गई है, आपको भ्रम में डाला गया और कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये जो इससे संबंधित प्रश्न इस तरह के जो आते हैं तार्किक रीजनिंग वगैरह के, तो आपको एक तरीके से उलझाने की कोशिश होती है और कुछ नहीं। वो देखते हैं कि अच्छा ये उलझा दिया गया है आपके दिमाग को, तो आप अपने दिमाग को ठीक से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको प्रशासक तो बना दिया गया और थोड़ी सी भी परेशानियां आ जाएं तो आपका दिमाग किस तरह से उलझ जाता है कि आप पसीना पसीना हो जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं कि नहीं भैया कुछ नहीं होगा मेरे से। अब ऐसे दिमाग वाले को प्रशासक कैसे बनाया जा सकता है, सोच करके देखिए आप खुद। इसके बाद जो विकल्प डी है, देखिए क्या है, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब यह है कि इन दोनों को भी अगर हम मिला दें तो हम उत्तर नहीं दे सकते, जबकि आप बकायदे S1 और S2 को मिला देने से उत्तर निकाल सकते हैं। मैं अब उत्तर नहीं निकाल रहा हूं, उत्तर नहीं निकाल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उत्तर आप निकालें। थोड़ी सी कोशिश करें, निकल जाएगा, बहुत आसान है, क्योंकि चारों के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन है सबसे बड़ा। बिल्कुल आप दोनों स्टेटमेंट के आधार पर निकाल लेंगे और ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसके लिए एक टेबल बनाइए, जैसे R को लाइन खींच करके एक जो बड़े तरह का निशान लगा दे कर दीजिए, P और Q से बड़ा है, R P और Q से बड़ा है, लिखित में करिए। इसके लिए रफ वर्क करना चाहिए, जो इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें आपको रफ वर्क करना चाहिए। आपके जो आंसर शीट होती है आप देखेंगे कि उसमें बकायदे पीछे साइड में रफ वर्क के लिए जगह होती है उस, लेकिन फिर उसे काट देना चाहिए। रफ वर्क आप कीजिए। और इसके बाद है S सबसे बड़ा नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली इससे निकाल लेंगे। फिर बकायदे S के लिए आप लिख लीजिए कि S के लिए क्या कहा गया है, फिर आपको पता लग जाएगा कि फिर सबसे बड़ा कौन है। आपको कुछ आभास हुआ, एस सबसे बड़ा नहीं है तो एस तो है ही नहीं, खत्म हो गई बात। पी और क्यू से बड़ा कौन है, आर, और एस सबसे बड़ा नहीं है तो कौन हुआ। थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, थोड़ा सा जोर डालिए, क्योंकि दिमाग को आराम तलबी की आदत पड़ गई है, इसे तोड़ना होगा। आपके तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि अरे 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 अरे, ये तो यह उत्तर है। तो दोस्तों, ये कथन के बारे में एक और प्रश्न मैंने हल करके आपको बताया है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इससे आपको कुछ मदद मिल सकेगी। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आपको दोस्तों प्रोवाइड की जा रही है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, आशुतोष आचार्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश से और सूरज कुमार सेमापुर बिहार से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।